राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 मई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष के नीचे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
लोगों की एक धारणा हो रही है कि रुपया होने से सब चीजें मिलती है, तो उनका ध्यान थोड़ी सी चीजों की तरफ है। रुपयों से संसार की खाने पीने निर्वाह की चीजें मिलती है, परंतु एक सर्वाधार है, सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है, सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सदा सर्वदा मौजूद है, ऐसे परमात्मा की तरफ ध्यान कम है। वो सर्वोपरि है, उसकी प्राप्ति करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको जानने के बाद फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहता, उसको पाने के बाद फिर पाने की कोई सी वस्तु बाकी नहीं रहती। यह करने की जानने की और मानने की शक्ति मनुष्य मात्र में है। ये शक्ति पूरी की पूर्ण हो जाए, पूरी की पूरी पूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए, ऐसे परमात्मा तत्व है। और वो सबका है, सबके लिए है, किसी के लिए हो और किसी के लिए न हो वो सबके लिए नहीं हो सकती, किसी की हो और किसी की नहीं हो वो भी सबकी नहीं हो सकती, और कहीं नहीं हो तो भी कहीं नहीं हो सकती, वो किसी अवस्था में और किसी अवस्था में नहीं हो तो किसी अवस्था में नहीं हो सकती, ऐसा एक लेख भी लिखा है। तो ऐसी एक चीज है वो विलक्षण। हमारे ऋषि मुनि महात्मा पुरुष तत्व की जीवन मुक्त भगवत भक्तों ने बहुत विलक्षण विलक्षण बातों का अनुभव किया है और अनुभव को प्रकट किया है। अनुभव उन्होंने हुआ है, वैसा अनुभव वे पूरा प्रकट कर सके नहीं, कारण के जो अनुभव होता है वो स्वयं में होता है, ज्ञान दूसरी चीजों का होता है, वस्तुओं का ज्ञान होता है, पदार्थों का ज्ञान होता है, कई बातों की जानकारी होती है, कई तरह की विद्याएं होती है, तो वे सीखी हुई होती है, परंतु जो वास्तविक अनुभव है वो स्वयं का होता है। स्वयं का जैसा अनुभव है वैसा अनुभव बुद्धि में पूरा नहीं आता, और बुद्धि में जितना अनुभव आता है उतना मन की कल्पना में नहीं आता, और मन की कल्पना में जितना आता है वो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, और वाणी के द्वारा जितना प्रकट करते हैं उतना लिखने में नहीं आता, और लिखने में जितना आता है उतना वो पढ़ने वाले पूरे नहीं समझ पाते। अगर उनके पूरे जो मन में समझ पाते हैं उतनी बातें उनके बुद्धि में नहीं बैठती, और उनके निश्चय में बातें जितनी आती है उतनी भी उनके अनुभव में नहीं आती, और उनके अनुभव में थोड़ी आ जाती है उनमें भी विचित्रता आ जाती है, तो जहां वे बातें प्रकट हुई वहां कितनी भी लक्षण होगा, क्या अंदाजा यार, बहुत अलौकिक विलक्षण बात है। अरे वो प्रकट और है वास्तव में, उसका क्या कहे, प्रकट तो किसी के सामने होता है, अनुभव किसी के होता है तो होता है, वो है पहले से ही, कैसे विलक्षण है, कितने अलौकिक तत्व की बात है, ऐसी बात है। तो परमात्मा तत्व तो बड़ा ही विलक्षण है, आखिरी है ये चीज, बस उसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना पाना करना कुछ भी शेष नहीं रहता, ऐसा है। अगर वो सबको प्राप्त हो सकता है, इसके विषय में मेरे को कई बातें मालूम हुई है, बात मालूम नहीं है। हरेक आदमी के लिए अधिकारी होता है कि ऐसे ऐसे अधिकारी हो तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सर्वोपरि तत्व उसकी प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है, उसके लिए कोई अनधिकारी नहीं है, उसके कोई अयोग्य नहीं है, उसके कोई निर्बल नहीं है, उसके प्राप्त करने में कोई भी मूर्ख नहीं है, उस तत्व को जानने में, उनके तत्व जानने में कोई अनजान नहीं है, अयोग्य नहीं है, निर्बल नहीं है, असमर्थ नहीं है, ऐसी बात है। परंतु फिर भी आश्चर्य आता है कि लोग उसको जानते नहीं, जानते नहीं, ये ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, जानना चाहते ही नहीं, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है, उस तत्व को जानना चाहते ही नहीं, जानना चाहे तो उसके समान सुगम कोई वस्तु नहीं, कोई ऐसा तत्व सुगम नहीं, इतना सरल नहीं है जो वो, क्योंकि वो सबका है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण वस्तुओं में, वो पूर्ण है, और इन वस्तुओं में पूर्ण है क्या, जिसके अंतर्गत सब वस्तु है, देश है, काल है, भक्त व्यक्ति है, सब उसके अंतर्गत है, ऐसा विलक्षण तत्व है। और उसकी प्राप्ति का अधिकारी मुख्यता से देखा तो मनुष्य है, सब है, परंतु सब में मनुष्य की जितनी योग्यता औरों में नहीं है, मनुष्य किसी देश का, किसी वेश का, किसी संप्रदाय का, किसी समुदाय का कोई व्यक्ति हो, जो चाहता है उसको मिल जाती है चीज, ऐसी चीज है, केवल उसके लिए चाहना की जरूरत है, योग्यता की जरूरत नहीं है। योग्यता का अधिकार अयोग्य पर पड़ता है, पढ़े हुए का अधिकार असर पड़ता है अपढ़ों पर, धनियों का असर पड़ता है निर्धनों पर, बुद्धिमाने का असर पड़ता है निर्बुद्धि पर। तो परमात्मा तत्व है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा योग्य है, सबसे ज्यादा बड़े हैं, योग दर्शन में उनके लक्षण बताए हैं, सब पूरे स्वामी कार्य नागत छेदात, वो पूरे जो ब्रह्मा आदि जितने पूर्व में उनका भी वो गुरु है। उसे हेतु बता काले नानवच्छेदात, मानो काल के द्वारा वो माप में नहीं आता है। भूत भविष्यत वर्तमान ये काल है, इस काल के अंतर्गत आने वाली छोटी चीज है वो इस काल के भेद से रहित है। कालातीत है, देशातीत है, वस्तुअतीत है, क्या कहें, अव्यक्त प्रकृति उससे अतीत है, ऐसा विलक्षण है। और इतना अलौकिक विलक्षण होते हुए भी सबको प्राप्त हो सकता है, केवल उसकी चाह न हो, उसको चाहते हैं ऐसी चाह न होनी चाहिए। परंतु वो सर्वोपरि है तो चाहना भी सर्वोपरि होनी चाहिए। उसकी एक लाल रात चाहना हो, उसके समान कोई चाहना ना हो, समान नहीं छोटी मोटी भी कुछ भी नहीं हो चाहना, तो उसकी तत्काल प्राप्ति होती है। और मुख्य चाहना से भी काम बनता है, उसकी मुख्यता आ जाए तो भी काम बनता है। अनन्य भाव होने से वो तत्काल प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि प्राप्ति उसको तो है, मौजूद है, उसे कहीं से लाना ले जाना थोड़ा ही है, वो तो स्वाभाविक है। और सबका अधिकार है उस पर। जैसे माता के बालक होते हैं, उन बच्चों में से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 10 बालक है तो भाई माँ का 10वां हिस्सा तुम्हारा है। पूरी की माँ, पूरी की पूरी माँ सबकी है, एक एक बालक की पूरी माँ है। तो वो एक देशी माँ वो भी संपूर्ण बालकों की है, तो वो परमात्मा जो सबका त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जितने संसार में प्राणी है सबके सब पूरे के पूरे सबके है। ऐसा नहीं भगवान पांती आए तुम्हें मिलेंगे, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे सब बालक पूरी माँ अपनी कैसे मेरी माँ है, ऐसे भगवान सबके हैं, सबके पूरे के पूरे। क्योंकि वो परमात्मा के विषय में कहा है कि पूर्णम अदा अपूर्णम एदम, ये एदम ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकला है, पूर्ण का पूर्ण दे तो पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण ही पूर्ण, अपूर्ण तो होती ही नहीं। पूर्ण से पूर्ण आ रहा है, पूर्ण का पूर्ण अंश ले ले तो पूर्ण अवशेष थे, पूर्ण का पूर्ण का पूर्ण ले लेते बाकी पूर्ण का पूर्ण शेष रहता है, उसमें अपूर्णता होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, संभव नहीं है उसमें कुछ कमी आ जाए, ऐसा वो तत्व है। उसकी प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है। आप हम सबके सबक चाहें तो उस तत्व को पूर्णता से प्राप्त कर सकते हैं। अरे उसके लिए ये जन्म ही खास जन्म है। कितने लोग हैं महाराज, 14 भवन है, स्वर्गमृत पाताल 3 लोग है, 14 भवन है, और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत है। ये तो एक ब्रह्मांड की बात है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रूए में एक रोम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड है। कितनी विलक्षण बात है। उन सब के लिए परमात्मा पूर्ण के पूर्ण प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे पूर्ण ही रहेंगे वो, अपूर्ण ही है। कितनी विलक्षण बात है। लोग थोड़े से रुपयों में ला करके कहते हैं रुपया तो लेना ही चाहिए, रुपया सार चीज है। रुपयों के लोभ में आकर के लोगों ने क्या क्या अनर्थ किया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे देखने में आती ऐसी बातें, रुपयों के मोह में आकर जमीन बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, और बनाया हुआ भोजन बेच देते हैं। रुपया आता है, रुपया आता है, कितनी बड़ी बारी एक भूल की बात है। एक बात बताओ, याद आ गई, खूब आपके हमारे सबके काम की व्यवहार की बात है, हमारे सबके लिए क्या आवश्यक है तो वो सामान्य रीति से देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान और अन्न, जल और कपड़ा, मकान, ये खास चीज है। अन्न, जल, कपड़ा और मकान, ये चार चीज है जो हमारे निर्वाह में खास काम आती है। अब ये निर्वाह में काम आती है, उनके लिए जरूरत क्या है कि अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, इससे हमारा निर्वाह होता है। एक मनुष्य छोटी दृष्टि से कहता हूं, इनकी ये जरूरत है, इनको भी बिक्री का रुपया ले लेते हैं तो रुपया इकट्ठा करके चबूतरा बनाकर चांदी, सोना, गहना और रतन, हीरा, पन्ना, माणिक, मुखराज, पुखराज, सब रत्नों को इकट्ठा करके, सोने को इकट्ठा कर चबूतरा बना दे, उस पर बैठा दे, परंतु अन्न जल न दे तो कितना दिन जीवेंगे। और अन्न जल बस हमारे को देते रहो, आप किसी धातु की वस्तु का दर्शन भी मत कराओ, बिल्कुल स्पर्श ही नहीं हो, दर्शन नहीं हो, तो हमारे में क्या बाधा लगेगी, हम खूब जी जाएंगे। इधर ध्यान नहीं है भाइयों का, हमें बहनों का ख्याल नहीं है, आपके जीवन के लिए इन वस्तुओं की जरूरत है। ये वस्तुएं, ये इस वस्तु जितनी है, इन वस्तुओं से ज्यादा आवश्यक क्या है कि ये जो जानवर, पशु पक्षी, ये जो अन्न, जल, वस्त्र, मकान बताया, तो अन्न, जल, वस्त्र और मकान पैदा किससे होते हैं, ये वृक्षों से, पशुओं से आदि से पैदा होते हैं, तो इनसे ये जो निर्जीव है, इनसे सजीव है बहुत आवश्यक, बहुत कीमती है। सजीव में ये स्थावर और जंगम है, इसमें स्थावरों की अपेक्षा जंगम बहुत कीमती है। मानो चलने फिरने वाले जीव एक तो एक ये वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, पौधे हैं, ये जितने हैं ये स्थावर कहलाते हैं, इनसे चलने फिरने वाले मुख्य, इन चलने फिरने वालों में मुख्य गाय है। गाय से जितना उपकार होता है स्वतः, इतना हरेक प्राणी से उपकार नहीं होता, बहुत उपयोगी। बड़े बड़े पशु, बड़े बड़े मनुष्य है, परंतु गाय का गोबर भी शुद्ध, गोमूत्र भी शुद्ध पवित्र, गोबर में लक्ष्मी का निवास, गोमूत्र में गंगा जी का निवास, उसमें 33 करोड़ों का देवता, बहुत उसमें पवित्रता, ये पवित्रता ले लेकर के उसमें इकट्ठी हुई है, देवताओं की, सब ऋषि मुनियों की पवित्रता, बहुत बड़ा नाता, मैं क्या कहूं, ऐसी गाय गौ की महिमा है। उस गाय की महिमा से भी अधिक है मनुष्य की महिमा। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, इसमें बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि में विवेक की प्रधानता है, परंतु इन पशुओं की उपयोगिता कम नहीं है। अब उस पशुओं को मार करके कहते हैं रुपया मिलता है ज्यादा, कितनी बुद्धि मारी गई, राम 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 राम, पशुओं को तो खत्म करो, रुपया गिनती बढ़ाओ, महान अनर्थ होगा, महान अनर्थ होगा, देश का महान अहित होगा, अभी ख्याल नहीं करते हैं कितना अभाव होगा, कितना पतन होगा, ठिकाना नहीं है। और मनुष्य के लिए मैंने बातें बताई, पहले अन्न, जल, वस्त्र, ये बताया मनुष्य के लिए। और मनुष्य है उसमें क्या प्रधान है, मनुष्य में है विवेक। ये जो मनुष्य की महिमा बताई गई है वो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतिया अधम शरीरा, शरीर को अधम बताया है। अरे पांच पंचित है, अधम बताने वाले गोस्वामी जी अगर उत्तराखंड के सबसे दुर्लभ मानुष दे, बड़े उत्तम सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो उत्तम शरीर मनुष्य को बताया। जीव चराचर जातर दे ही, और वहां पर नर के स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ऐसी ये देह है, इसकी महिमा बताइए। तो वे अधम शरीर का शरीर तो अधम ही है, तो महिमा किसकी है सज्जनों, ये ध्यान देने की बात है खास। इसमें महिमा है विवेक की, नित्य अनित्य सत्य असत्य कार्य अकार्य शुद्ध अशुद्ध, इन चीजों की जो पहचान करने की ताकत है उसको कहते हैं विवेक, असली समझ। उस विवेक की प्रधानता से मनुष्य की महिमा है, शरीर से नहीं है, शरीर तो अधम शरीर है। जब मर गया बाली का शरीर तो वह कहेंगे ऐसो तन तो यह आगे सुबह भगवान राम तारा को कहते हैं, वो तन तेरे सामने पड़ा है। तो शरीर की महिमा नहीं है, इंद्रियों की महिमा नहीं है, प्राणों की महिमा नहीं है, मन बुद्धि अहं की महिमा नहीं है। बुद्धि के भीतर जिस प्रकाश को बुद्धि प्रकाश करके सबको जलाती है, वो प्रकाश एक विवेक शक्ति है। यहां थोड़ा सा मतभेद में आता है, कोई मानते हैं कि विवेक बुद्धि का कार्य है, तो बुद्धि विवेक का, कोई कहते हैं बुद्धि का विवेक, बुद्धि से विवेक होता है, ये बात है नहीं। विवेक बुद्धि में आता है, बुद्धि एक यंत्र है, जैसे बिजली का लट्टू होता है उसमें प्रकाश आता है वो बिजली का है। बिजली लट्टू में आ जाए इतनी बिजली नहीं है, बिजली तो बहुत व्यापक तत्व जैसे कितने कार्य होते हैं, वो बुद्धि में आ जाता है उसको विवेक कहते हैं। बुद्धि में आ जाता नहीं है, बुद्धि में आता है, बुद्धि का कार्य नहीं है वो विवेक, बहुत विलक्षण शक्ति है एक। गीता में आया है, ध्यान दे कि सुने भाई, हमारी ये बात पहले समझ में आई नहीं थी, वर्षों तक ख्याल ही नहीं गया हमारा, फिर ख्याल गया तो बड़ा आश्चर्य आया हमें। ये इस वास्ते भूमिका बांधी है कि आप ध्यान दें इस बात पर, विवेक है वो कैसे आया कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। गीता में आया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो, तो प्रकृति और पुरुष अनादि है, तो प्रकृति के और पुरुष का जो भेद है क्या ये भेद शादी है, मानो प्रकृति पुरुष तो अनादि है परंतु प्रकृति पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान ये अनादि नहीं है क्या। नहीं तो दो क्यों कहा, प्रकृति पुरुषम चैव विद्या अनादि उभावपि, दोनों को अनादि समझो, तो उभव दोनों को अनादि समझो, तो दोनों अनादि है, तो दोनों का विवेक ये प्रकृति है पुरुष है ये भी अनादि है। प्रकृति पुरुष है ये बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि उनका कार्य है। प्रकृति महान ततो अहंकार तस्माद गुण षोड़श गण गणस्त षोड़श का, ऐसा आया है सांख्य में। तो प्रकृति से महतत्व प्रकट होता है। महतत्व नाम है ब्रह्मा की बुद्धि, समष्टि बुद्धि, संपूर्ण मात्र बुद्धि का जो महान तत्व है। वो महतत्व क्यों कहलाता है कि सब तत्वों में महान तत्व है, उसके समान दूसरा कोई तत्व महान नहीं है। आकाश भी उससे उत्पन्न हुआ है। ये बात समझ नहीं आती है, आकाश भी उत्पन्न होता है। बताया उपनिषदों में तस्माद हेतु स्वाद वा आकाश संभूता आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नि राप अध्व पृथ्वी, ऐसे आए उत्पन्न हुए। तो उस प्रकृति से महतत्व होता है। महतत्व का एक अंश बुद्धि है, तो बुद्धि वहां प्रकृति का भी एक तुष अंश है। और प्रकृति और पुरुष का जो विवेक है अलग अलग पना, वो बुद्धि का कार्य कैसे हुआ, थोड़ी दार्शनिक बात है, विधि सीधी सरल बात है। कहते बुद्धि कर्मानुसारिणी, तो कर्म का भी फल बुद्धि नहीं है। और बुद्धि को मान भी लो तो बुद्धि में जो विवेक आता है वो कर्मों का फल नहीं है। बुद्धि में ज्ञान होता है, हमारे को बुद्धि से मिलता है। जैसे बिजली का प्रकाश हमारे को मिलता है लट्ठू से, इस वास्ते उस लट्ठू को बिजली कहना ठीक है, पर बिजली तत्व तो बड़ा विलक्षण है, उसका किसी अंश में प्राकृत्य है। ये बिजली से कितने काम होते हैं हम तो गिनती नहीं कर सकते भाई, हमने गिनती की चेष्टा भी नहीं की। परंतु छोटे बड़े कितने रेल चलती है, मोटर चलती है, और कई चीजें चलती है, कितनी तरह की मशीन चलती है, छपा भी होती है, बुनाई भी होती है, सिलाई भी होती है, क्या क्या होता है, कपड़े की धुलाई भी होती है, गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, लाए से लाए आग लग जाए, जल भी जम जाए, इतनी इतनी विचित्र चीजें उनसे बिजली से होती है। उस बिजली का आज थोड़ा लट्टू में आ गया प्रकाश। ऐसे विवेक का कोई अंत नहीं है। प्रकृति पुरुषम से इसके सिवाय और कोई तत्व नहीं, उसका भी प्रकृति और पुरुष का भी विवेक है, उनका भी विभाग है, दो अलग है। ये विभाग करने वाली शक्ति का नाम है विवेक। और ये सत्संग के द्वारा ये विवेक होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, ये कहते हैं सत्संग बिना विवेक होता नहीं, विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक जागृत होता है। सत्संग करने से वो जागृति होती है, विवेक पैदा होता है। तो विवेक से सब जानते हैं। राम दया सतगुरु, राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कछु, ये जाने कछु ये विवेक है। रहे विषय शुभ हो बात मृम पड़ा है। तो विवेक ऐसा होता है। अविवेक जब दे विधाता, तो विधाता देते हैं ये बात मानते हैं, तो इसमें मतभेद मैंने कहा, कोई विवेक को अनादि मानते हैं, कोई ऐसे शादी मानते हैं। पर दोनों मान्यता में थोड़ी बात कहता हूं, ख्याल करें, पीछे ज्यादा बारीक नहीं कहूंगा। विवेक है, उस विवेक को हम पुण्य कर्मों का फल माने। बुद्धि में विवेक आता है, बुद्धि कर्मानुसार कर्म शुभ कर्म होते हैं, उन शुभ कर्मों का फल विवेक होता है, ऐसा मान लें। तो ध्यान दें थोड़ा सा, पहले अशुभ और शुभ दो कर्मों का विभाग होगा, ये जानकारी होगा, तभी तो अब अशुभ कर्म नहीं करेंगे, शुभ कर्म करेंगे। तो शुभ कर्मों का फल हुआ, शुभ कर्मों का जनक हुआ विवेक। अब शुभ कर्म अशुभ कर्म का विवेक पहले है, पीछे शुभ कर्म है, फिर शुभ कर्मों का फल बुद्धि है। तो बुद्धि हो सकती है, बुद्धि में बुद्धि वो यंत्र हो सकता है, परंतु जो विवेक शक्ति है वो अनादि है, सदा है वो। वो विशेष प्रकट होती है मनुष्य शरीर में, और तुझे शरीरों में भी है, वृक्षों में भी है, पशुओं में है, पक्षियों में है, देवताओं में है, राक्षसों में है, असुरों में है, सब में है। परंतु वो विवेक इतना ही है जिससे काम निर्वाह चले, इतना इतना ही है। महान विवेक जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ले, ऐसा विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है। और वो विवेक दिया है, वो ही विलक्षण दया है भगवान की। बड़े भाग्य मानुष बन पावा, कब रोग करी करुणा नर देही, देत इस बिन हेतु सने ही। मनुष्य शरीर देते हैं बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु। तो मनुष्य शरीर दे दिया भगवान कृपा करके, तो मनुष्य शरीर में विलक्षण कृपा की बात है। विवेक सत असत नित्य अनित्य इनको जानना, इनके जानने में मैं ये विषय बताया कि सबसे बढ़िया चीज है कि सत्य, सत्य से अगर नीचे उतरो तो विवेक, सत असत का विवेक, उनसे असत और असत का ये कार्य है संसार, ये शरीर, शरीर के निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र आदि ये है। परंतु शरीरों का भी तात्पर्य विवेक में है, तो विवेक जागृत करना और विवेक भी जागृत परमात्मा को प्राप्त करना। और दुरुपयोग करने से लाखों करोड़ों आदमियों का एक दिन में नाश हो जाए, फट है एक बम, वो बम भी बनता है विवेक से ही, बुद्धि माने से ही बना जाता है विवेक, अरे थोड़ी बना सकता है। तो बुद्धि का महान दुरुपयोग जो विनाश में लगाया जाए, तो विवेक का उपयोग वो बढ़िया है, विवेक की अपेक्षा विवेक का सदुपयोग। तो विवेक का उपयोग वो बढ़िया है, विवेक की अपेक्षा विवेक का सदुपयोग। तो सब वस्तुओं का सदुपयोग बढ़िया है दुरुपयोग की अपेक्षा। अब एक बात बताओ, सीधी सीधी ये जाल की बात नहीं, सार बात बताओ। हरेक परिस्थिति का, हरेक अवस्था का, हरेक घटना का, हरेक उपयोग अनुपयोग सदुपयोग, अनुपयोग दुरुपयोग सदुपयोग, दुरुपयोग सदुपयोग। उपयोग अच्छा किया जाए, दुरुपयोग न किया जाए, तो आपकी हरेक परिस्थिति, हरेक अवस्था, हरेक वर्ण, हरेक आश्रम, हरेक संप्रदाय कल्याण करने वाला हो जाएगा, सबका सब कल्याण। हरेक वर्ण, हरेक आश्रम, हरेक संप्रदाय कल्याण करने वाला हो जाएगा, सबका सब कल्याण। मेरे जो विचार आया मन में वो आया कि भाई बहन भाइयों ने वस्तुओं को महत्व दिया और उसे रुपये पैसों को महत्व दिया, तो भाई कहने लायक बात तो अब आ गई, क्या करो। सबसे जद्दी अगर चीज है तो रुपया है। मेरे को मूर्ख बताएंगे लोग, समझते नहीं और बताएंगे जानते नहीं। ऐसी बातें मैंने सुनी है कि स्वामी जी को रुपयों का ज्ञान नहीं है, समझते नहीं है। परंतु मेरी समझ में बेसमझ नहीं हूं मैं, कोई भी अपनी समझ में बेमान समझ थोड़ी है। अपनी दृष्टि से बेअकल कोई नहीं है, अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना मुश्किल है संसार भर में। अकल का तो अधूरा नहीं मिलेगा और गांठ का पूरा नहीं मिलेगा। रुपया तो हमारे पास बहुत, बस हमारे पास बहुत है, ऐसा नहीं मिलेगा। रुपये मैं तो जानता कम हूं, नहीं जानता हूं, ऐसा आदि पूरा मुश्किल है। सबको अधिक मानते हैं। तो रुपया खुद काम में नहीं आता, थोड़ी सी व्याख्या कर दूं उसकी भी, ख्याल करो। आपके काम में रोटी आती है, जल आता है, कपड़ा आता है, मकान आता है, रुपया इनके द्वारा काम आता है, स्वयं रुपया काम में नहीं आता। रुपयों से आप जल मंगा सकते हैं, रुपयों से अन्न मंगा सकते हैं, रुपयों से मकान बना सकते हैं, रुपयों से कपड़ा ले सकते हैं, खाने पीने की चीज नहीं औषधि ले सकते हैं, सवारी ले सकते हैं, हवाई जहाज की सैर कर सकते हैं, सीजनल सब रुपयों से ये चीजें मिलती है। इस बार लोगों ने रुपया की होती है, भाई रुपया कैसे चीज मिलती है, परंतु रुपया से नहीं मिलती है। आप जंगल में चले जाओ, रुपये लाखों करोड़ धर दो, मिलेगा कुछ चीज नहीं मिलेगी। चीज तो उत्पन्न होती है, वो है खास, सावर और जंगम जिनसे उत्पन्न होती है वो चीज है, और काम आती है आदमी बस आती है चीज है। ना तो जीवन से देखो रुपया से कोई पैदा होता, ना कोई जीवन रुपया से कोई ऐसा महत्व होता काम आता। अब रुपयों को जिन्होंने महत्व दे दिया है, बहुत अधिक मान लिया है, मैं क्षमा मांगता हूं, गंगा जी किनारे आप क्षमा करेंगे मेरे को। बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो जाती है, रुपयों का महत्व आते ही बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो जाती है। सबसे निकृष्ट चीज को महान मान लिया, अब बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो तो बुद्धि कैसे थी शुद्ध होगी। आपके निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र है, खाने में आते है, पेशाब और टट्टी भी काम में आती है, रुपया काम में नहीं आता है। कंकर पत्थर रेता भी नींव भरने में मकान बनाने में काम आता है, रुपया काम नहीं आता। रुपया स्वयं किसी काम में नहीं आता। रुपया से एक चीज देते हैं, अगर रुपये से ही काम आता तो मैंने कहा रुपयों के ऊपर बैठा दो उसको, अन्न जल मत दो, कितना दिन जिएगा? रुपयों के बिना अन्न जल से हम उम्र भर जी जाएंगे, पीढ़ियों तक जी जाएंगे। तो जीवन में उपयोगी इतने रुपया नहीं है, रुपया रुपयों की जगह बहुत कीमती है, परंतु अपनी जगह ऐसे ही शरीर के लिए निर्वाह के लिए जूती बहुत उपयोगी है। ये दर्द वो मन का थैला जिन पगों पर चलता है, उन पगों की रक्षा करने वाली जूती काम की है, परंतु सिर पर उठाने की नहीं है। ऐसे ही आप आदर दो तो परमात्मा तत्व दो, चेतन तत्व को दो, वो महत्व जो खुद चीज में कुछ में नहीं है, चीजों के द्वारा उन रुपयों को महत्व दे दिया तो बुद्धि मारी गई। कहें क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सज्जनों। वही बुद्धि अगर भगवान को लगाई जाए तो आपकी बुद्धि में जो विवेक असली विवेक है वो सत्र असत का विवेक और असत की निवृत्ति होने पर सत्य का शेष रहना तत्व ज्ञान है, वो विवेक ज्ञान में परिणत हो जाता है, बोध में परिणत हो जाता है, मुक्ति में परिणत हो जाता है। और उस विवेक की जागृति के लिए ही हमारा ये उपयोग है, ये उद्योग है, ये परिश्रम है, ये संयोग है। विवेक कि जो क्या करें क्या न करें इस बात में वे लिए ये सत्संग है। तो सत्संग के द्वारा इन बात को जानना है कि सबसे बढ़कर है परमात्मा, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बढ़कर है विवेक। तो वो विवेक आता है बुद्धि में, तो प्रकृति पुरुष अनादि है, इससे विवेक भी अनादि है। ये भगवान की दी हुई शक्ति है, अलौकिक चीज है, ये प्रकृति का कार्य नहीं है। तो ऐसे विवेक पूर्वक काम करो, समझदारी से काम करो। उस विवेक को कैसे काम लें कि हमारा और दुनिया का अभी और परिणाम ही तो चार बात कितनी सुगम बात बताओ। अभी भी जिससे फायदा हो, परिणाम में फायदा हो, हमारे फायदा हो, प्राणी मात्र के फायदा हो, वो काम करो, ये विवेक का काम है। और हमारा और दूसरों का अभी और परिणाम में नुकसान न हो, नुकसान हो वो न करे, नुकसान वो काम करिए, विवेक का दुरुपयोग। और सबका हित हो ऐसे काम करे, ये है सदुपयोग। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नमें अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में तो हित करना सबका परिणाम में भी अभी जिनसे हित हो है, इसमें काम लगा विवेक का सदुपयोग, और जिससे अहित होता है नाश होता है वे विवेक का महान दुरुपयोग। कितनी विलक्षण शक्ति है जिसका कितना दुरुपयोग होता है और उसको महत्व देते हैं। अब अधिक से अधिक आदमियों को मार दे, अधिक से अधिक दूसरे का नुकसान कर दे, उसकी बहादुरी है। कहां अकल करेंगे? राम 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 राम, क्या होना था, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। तो भाई भगवान को याद करो, सीधी सरल बात। तो सब से ऊपर विवेक का भी सत्य है, वो सत्य परमात्मा इतना ऊंचा कि उनके समान कोई और हो नहीं सकता। न तत्सम कुतोन्या लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कौन होगा। ऐसे अपार अपय असीम प्रभावशाली परमात्मा इतने सर्वोपरि और प्राप्त हो जाए हरे को। भगवान गऊ चराने को जाते हैं तो हुंकार करते को ऐसे हुंकार करते खुश हो जाते हैं भगवान। गाय को मिल जाए भगवान गाय को, और बड़े प्यार करे उससे भी, मनुष्यों को, ग्वाल बालों को। भागवत में आया है गोपिकाओं के लिए बड़ा शब्द ऐसा करा दिया जो नहीं देना चाहिए, बड़ा मैं व्यास दे दिया। हम क्या करें, ऐसा बनचरी व्यभिचार दुष्ट व्यभिचार दुष्ट है। अरे बनचरी जंगली जंगली आदमी, जंगली सभा कितनी विलक्षण हुई गोपिका, कितना उनका ऊंचा महत्व हो गया है भगवान की तरफ जाने का। कितनी विलक्षण बात, सबसे ज्यादा ज्ञानी बृहस्पति देवताओं के गुरु, उस बृहस्पति का शिष्य खास उद्धव जी महाराज, बृहस्पति का शिष्य। वे कहते आसाम हो तरण रेणु दुषाम हम श्याम वृंदावने किमपी गुलमलत औषधि नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पतन सहित्वा भेदुर मुकुंद पदवीं श्रुति भीर प्रमिज्ञाम। वेद की रचाएं जिस परमात्मा को ढूंढती रहती है पाती नहीं है, उस परमात्मा तत्व को गोपिकाओं ने पा लिया। उद्धव जी महाराज कहते उन सेनों ने गोपिकाओं के चरण रज्जु प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई वृक्ष में वृद्ध में पौधा भर जाऊं, घास भर जाऊं, लता भर जाऊं, वृक्ष भर जाऊं। क्या फायदा कि गोपिकाएं जब भगवान की तरफ चलती है उनकी रज्जु उड़ती है चरण सो मेरे ऊपर मिल जाए, वो रज्जु पर जाए मेरे ऊपर। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, उनकी चरण रेणु सुन सेवन करने वाला मैं हो जाऊ, चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुणपल्लत औषधि नाम, कोई पौधे में किसी में भी। महिमा क्या है, या दुष्टजन स्वजन मार्य पतन सहित, संसार का मोह नहीं छोड़ सकते आदमी, वो मोह छोड़ दिया मानेगा, ना कोई पुत्र का मोह है, ना पति का मोह है, ना घर का मोह है, ना गाय का मोह है, ना दूध का मोह है, ना देह का मोह है। या दोहने वहनने मथनोपलेप तेंखनार्वजुतो क्षणमार्जनादो गायंती से न मनोरक्त ध्यो अश्रुकंठ्या, गायंती से न मनोरक्त ध्यो अश्रुकंठ्या। धन्य गुरु क्रम चित्त याना, धन्य गुरु क्रम चिंत याना, दोनों पास जाता है। ऐसे परमात्मा का चिंतन करती है दुजन ये दुश्चर्य क्या है कि मनुष्य से कुटुंब नहीं छूटता, भाई बंधु बेटा आदि नहीं छूटते, सद हो जा बाबा जो जा तो भी इंदर याद आती। ब्रह्मराज जंगल में रहने बेचारे जंगल में रहने वाले या दुष्चम स्वजनम और इससे आगारी कुटुंब को छोड़ गए जो आर्य पथ है, ठीक मर्यादा है, धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, इस बात है, उसको भी छोड़ दिया। गोपिकाओं ने इसकी भी कुरा दे दी, उद्धव जी ज्ञान देने के लिए गया, ज्ञान बजाई डुगडुरी बजाय बजाय ढोल उदो शुदो हो गए कृष्ण गोपियन को बोल शुद्ध हो गया रामो चल भगवान की कितनी प्यारी। तो सजनो ऊंचा ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर सकते पर भगवान के चरण में प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी कितनी भगवान दया करे न करे, आपके माने न माने, स्वीकार न करे, परंतु भगवान मेरा है, इस कहने में क्या बताएगा, क्या है इस बाधा है। चाहे जैसा आदमी चाहे जैसा हो करे भगवान मेरे हैं। महाराज भगवान तो पकड़ में आ जाए, एक दिन रामायण कथा हो रही थी सुबह सुनने का काम पड़ा, उसमें बताया कि भगवान है उनको कोई वश में करना चाहे तो जिस तरह से ये अफसर लोग होते हैं ना, तो व्यापार करने वाले उनसे अपना अधिकार चाहते हैं कि हमारे को अमुक अधिकार मिल जाए, व्यापार करें तो हम भी धनी बन जाए। वो किसी अफसर के हाथ में हो तो ये क्या करते हैं कि उस स्त्री को जाकर डाल देते हैं कि यहां दबेगा ये अफसर, यहां कड़ है इसकी और जगह दबेगा नहीं। वो कह रहे थे वो ठाकुर हो जाए मिल जाए, तो ये कमजोरी होती है, ऐसी कमजोरी पकड़ लिया जाए तो फिर सू नहीं करता वो कुछ नहीं। ऐसे भगवान की भी कमजोरी है कथा में सुनी भाई रामायण में सुनी है, और कमजोर को भगवान को पकड़ लो क्यों नहीं कर सकते, फिर भगवान में शक्ति नहीं है इधर उधर जाए। वो क्या कमजोरी, अनंत ब्रह्मांड जन की पूर्णा मात्र से गतिज होते हैं, पालित होते हैं, संग्रहित होते हैं, सब कुछ होते हैं, ऐसे सर्वोपरि से बढ़कर कोई नहीं, वे परमात्मा भी है उनके भी कमजोरी है, घर बिंदु जानता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गतिन आन की, बस एक आस और एक बल एक आस विश्वास ही, एक भगवान का जो जाए तो फिर भगवान चू नहीं कर सकते। कितने बड़े केवल हे नाथ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इतनी जो आते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और दूसरे सब धोखा देने वाले मिलेंगे, विश्वास करोगे कहीं धोखे में आ जाओगे, कुछ करने वाले है नहीं, उनको अपना न माने, उनमें भी आधा काम अपना न मानना, उसे चाहना नहीं, सेवा सभी करना, तो सेवा करने में सब हमारे, सबकी सेवा करो, उसे चाहना मत करो, और चाहना भगवान से मत करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे भाई, मैं मेजबान तुम्हारा साइया तुम मेजबान हमारे, भगवान को मैं मानता हूं हो गया, हमारे मेहमान भगवान हो गए। अरे भगवान के साथ अपनापन, कितने बड़े ब्रह्मांड, कितना अनंत ऐश्वर्य आदि वो सब का शुभ भगवान के एकांश में भगवान, मैं भगवान कहूँ मैं और किसी का ना हूँ, मेरे भगवान है बस। ये भगवान की कमजोरी है, अनन्य भाव, अन्य नहीं और आश्रय नहीं, और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कन्हाई को, बस और आश्रय नहीं, एक भगवान हमारे है। सज्जनों इतना सहारा आपने रुपयों का लिया है, कुटुंब का लिया है, मान सत्कार बढ़ाई का, शरीर का, निरोगता का, वाह वाह का, आदर का लिया है, ये महत्व मन में न रखकर केवल भगवान ही सर्वोपरि है ऐसा मान लो, मेरा भगवान ही आधार है, सब छूटने वाला है, ये आदर निरादर, ये महत्तार, ये शरीर, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपये पैसे, ये राज लक्ष्मी, ये पद, ये अधिकार, ये मिनिस्ट्री, कोई रहने वाली नहीं, रहने वाली नहीं है, उसका भरोसा नहीं रखो, इतनी तो बात है, जाने वाले का भरोसा मत रखो, रहने वाले प्रभु कृपा हो गए, इनकी कोई हमारी गलत नहीं, कितनी सीधी, जो सब नष्ट होने वाले है उसको महत्व देकर के गुलामी मत लाओ भाई, इतनी बात है, एक भगवान हमारे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने, तो मेरे तो गिरधर गोपाल के याद भी कह देते हैं, परंतु दूसरों ने कोई याद अड़ जाते हैं, वो खुद में ठगे जाते हैं, और घास हो लिया और कब लिया, सब पोल निकाल देंगे, सब कुछ नहीं जाएगा, ऐसे प्रभु को अपना मानो, केवल अपना मानो, मेरे भगवान ही मान लो, कि मान्य हाँ मान, केवल मानना है कि भगवान हमारे हैं, जैसे तत्व ज्ञान को बताया कई तरह मैंने ज्ञान के कई पुस्तकें लिखी, विवेक भी लिखा, बहुत बातें लिखी है, बहुत नहीं है, मैं बहुत मैं अपने में बहुत ही है, अपने तो आदमी है, ऐसे लिखा है जिसमें विवेक का लिखा, पर ठाकुर जी को अपना मानने तो विवेक वो अपना बाता है, इसमें बढ़िया चीज है, भक्ति में इतनी विलक्षणता है, अलौकिकता है, भक्ति के छोरा है ज्ञान बैराग्य, माँ है भक्ति, वो भक्ति क्या मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, ये इसकी पुष्टि है, मेरे तो गिरधर गोपाल भक्ति हो गई, दूसरों ने कोई ये पुष्ट हो गई, बस अब दूसरों ने कोई होते ही भगवान चुप हो जाते हैं, अब भगवान क्या करे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, इस विषय में रास पंत्र अध्याय में भगवान कहते हैं मैं ऋणी हूं, गोपिकाओं का ऋणी हूं मैं ऋण उतार नहीं सकता, भगवान कृष्ण कहते हैं गोपिका जो अपने द्रौपदी, द्रौपदी ने कृष्ण कृष्ण मेरे को पुकारा, तो ऋण में तत्प्रवृद्धम में, ऋण में तत्प्रवृद्धम में, मेरे पर ऋण बड़ा बढ़ गया है, हृदय नाप सरपति, वो ऋण मेरे हृदय से उतरता नहीं, छाती दब गई, दब गया मैं तो ऋण से दब गया, ऋण में तत्प्रवृद्धम में, हृदय नाप सरपति, ये चुक्रोश है कृष्ण माम, कृष्ण दूरवासी ने कृष्ण गोविंद गोपी जन प्रिय द्वारकावासिन गोविंद द्वारकावासिन गोपी कृष्ण कृष्ण गोपी जन प्रिय ऐसा बुलाया, हे द्वारकावासी, तो दूरवासी ने द्वारकावासी को बुलाया, इस बार थोड़ी देर लगी, द्वारकावासी का द्वारका जाकर आना पड़ता है, समझे कृष्णाम दूरवासी नम शुक्रष्ण मेरे को पुकारा, तो पुकारा और सब कुछ कर दिया, वो तीर बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया, इतने पद भगवान कहते हैं महादेव 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 यो बदे देख मुक्ति मा पुनोति द्वाभ्याम प्रम्भूरिणी भवेत, तो भगवान को पुकारता है हृदय से, उसके ऋणी हो जाते हैं। जैसे हृदय से पुकारता है भगवान, वैसे ही पुकारे। इतने पर भी भगवान ऋणी क्यों मानते हैं? गोपिकाओं के ऋणियों में कहते हैं, मैं गोपिकाओं के ऋण चुका नहीं सकता, क्यों? गोपिकाएं तो केवल मेरे को ही मानती है, मैंने गोपिकाओं से औरों को भी मानता हूं, मैं हार गया। दोनों को बरोबर देखा जाए तो गोपिकाओं जो कहती है हमारे कृष्ण और कोई मेरा है ही नहीं, तो मैं ऐसा कह तो देता हूँ मेरे गोपिकाओं मेरे कोई दूसरा है ही नहीं, कह देता हूँ, परंतु भगत पर दूसरा पुकार तो वहीं चले वो ढीला हो जाता हूँ। ये ढीली नहीं होती। भगवान पर तो हम सबका लगता है सबकी माँ ठहरी, गोपियों को रख गया भगवान जाए। जो अपने पास में कुछ नहीं है तो हमारे पास इतना बल है जिसका बराबरी भगवान नहीं कर सकते। गोपिकाओं ने अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दिया, तो वो सुपुर्द कर दिया, उसका ऋण भगवान पर चढ़ गया कि भगवान के मैं गोपिकाओं तो वो जैसे मैं वैसे ही भजता हूँ, परंतु गोपिका का दूसरे कहते मैं किसी की हूं ही नहीं, मैं कैसे कहूंगा मैं किसी का हूं ही नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सतयो भजामि, तान सतयो सबको बहुत पसंद दिया हुआ। कितने ही नहीं हो जाते भगवान, कितने बड़े जिसका कोई पारावार नहीं वे भगवान हो जाते, तो ये कमजोरी क्या हुई भगवान की कि भगवान के सिवाय और का आश्रय न रहे। बस अपी से शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, मूर्ख से मूर्ख, दाम बुद्धियों को दम, और थोड़े अंतकाले तो अंतकाल में भी अगर करो तो क्षिप्रम भव धर्मात्मा सम्यक दृष्टि। एक निश्चय किया है भगवान का, मैं भगवान का हूं कहते ही महाराज वो पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं साधु रेव सब मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए, मानना चाहिए। शब्द वहां लागू होता है जहां साधु होता नहीं है। साधु होता है साधु, साधु क्या माने? दुष्ट है उसको साधु मानना चाहिए। क्यों कहते हैं अभिषेक दूरत है? आप स्वयं कहते हैं अभिषेक शुद्राचार है वर्तमान में, अभिषेक शुद्राचार आसीत पूर्व में, ऐसा नहीं कहते हैं शुद्राचार भजते माम वर्तमान है अनन्य भाव। साधु रेव साधु रेव मंगतव्य, साधु ही मानो उसको, हुक्म दे दिया भगवान ने, आज्ञा दे दी है, साधु नहीं मानो तो दंड होगा महाराज, बड़े भर का हुक्म है, मंतव्य है, मंतव्य आज्ञा है, साधु रेव से मंतव्य, साधु मानना चाहिए उसको कि महाराज हमारे को दिखता नहीं, आप खुद कहते हैं शुद्राचारी, सुष्ट दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी है। कहते हैं भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं तेल धारा वर चिंतन करा, ये नहीं है जैसे पतिव्रत एक दे नहीं पति कहते हमने तो सौंप दिया वर, एक ही मालिक हमारा, ऐसे ये अनन्य भाग है। नहीं तो बड़े वर्षों से भजन ध्यान करते हैं उनका तत्काल दीप शिकार तेल धारावत मन उनका नहीं लगता, तो शुद्राचार्य अनन्य भाग ध्यान लगे तो वैसा पात्र तो देखो शुद्राचार्य अनन्य भाग के तो अब तो भगवान के, अब भगवान के मान ही सकते, कोई भी मान सकता है, आपके घरों की कन्या मान सकती है, पति को दे दिया हम तो उनकी है, केवल उनकी है सब दे दिया। इतनी सुम बात, इतने भगवान हो जाए ऋणी, इतने बड़े परमात्मा हमारे को मुफ्त में मिल जाए, मुफ्त में केवल हे नाथ। इतने में क्या संजोति जी महाराज थे, हम लोग गए थे उनकी बातें सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा था हम तो साधु मोटा हो गए भाई, बात तो इतनी गए ना, बस मैं आपका हूं। आप हृदय से कहो हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान तो मैं तुम्हारा हूँ। कैसी बात है, कितनी मीठी बात। दूसरा न कोई तो भगवान वैसा ही करेंगे, दूसरा कोई जैसा ही नहीं है, परंतु फिर भी कई ऐसी कथाएं आती विलक्षण। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, तो इतना हम है जिसमें सबसे रद्दीशील पैसा और सबसे श्रेष्ठ परमात्मा बैठ गया कि सबसे बढ़िया रुपया तो बुद्धि हो जाए, सबसे बढ़िया परमात्मा तो निहाल हो जाए, संत हो जाए, महात्मा हो जाए। ये बात है। अब सुना लो आज आप भाई, नारायण 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 जी हो तो वो तो जीवन तो काम आवेगी ही। अब उसे टावर से बिजने में निकलना ही पड़ता है, कोई बात नहीं है। एकादशी का व्रत है, कोई न कर सके तो भगवान को याद करे, वो सबसे बढ़िया चीज है। भगवान भजन आदि है जितने ही है, तीर्थ है, व्रत आदि जितने, सबसे बढ़ करके भगवान का भजन बताया है शास्त्रों में, वो करो। अब कर नहीं सको वो करना आप पर जिम्मेवारी नहीं है, जो कर सको वो करो। तो मनुष्य क्या कर सकता नहीं, वो तो करने का इरादा रखता है, अगर कर सकता है वो करता नहीं। अरे भाई राम 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 सीधा करो, उपदेश उपवास होना कठिन पड़ता है, तो राम राम करो। नारायण 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 नारायण।